नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। सरकार ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पेश किया। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, विधेयक का मुसलमानों की धार्मिक प्रथाओं से लेना देना नहीं, ये केवल वक्फ संपत्तियों से संबंधित है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में सरकारी ई मार्केट प्लेस के माध्यम से 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज से नए शुल्क लागू करेंगे। ऑटो आयात पर पहले से लगाया गया 25% शुल्क कल से प्रभावी होगा। इसराइल गाजा में सैन्य अभियानों का विस्तार करते हुए बड़े पैमाने पर फलस्तीनियों को सुरक्षित निकालेगा। और बेंगलुरु में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। संयुक्त संसदीय समिति द्वारा रिपोर्ट किया वक्फ संशोधन विधेयक 2025 आज विचार और पारित करने के लिए लोकसभा में पेश किया गया। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि इस विधेयक का मुसलमानों की धार्मिक प्रथाओं से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि ये केवल वक्फ बोर्डों से संबंधित संपत्तियों से जुड़ा है।
गवर्नमेंट किसी भी धार्मिक व्यवस्था को, किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कोई धार्मिक काम में हस्तक्षेप करने नहीं जा रहा है, ना ही वक्फ बोर्ड किसी धार्मिक स्थल की व्यवस्था में कोई भी तरीके से हाथ डालने का प्रावधान है, बिल्कुल नहीं है। ये वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान, किसी मस्जिद, किसी मंदिर, किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है। ये सिंपली एक प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट का विषय है।
श्री रिजिजू ने कहा कि ये कानून मस्जिद के प्रबंधन के लिए नहीं है। श्री रिजिजू ने कहा कि मौजूदा विधेयक के अनुसार वक्फ बोर्ड में विभिन्न मुस्लिम संप्रदायों, महिलाओं और गैर मुस्लिमों और अन्य लोगों का प्रतिनिधित्व होगा। उन्होंने विपक्ष पर विधेयक को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संयुक्त संसदीय समिति के साथ साथ सरकार ने भी कानून बनाते समय हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श किया था।
कुल मिलाकर के 97,27,772 याचिकाएं ऑनलाइन फिजिकल मेमोरेंडम के रूप में, रिक्वेस्ट के रूप में और सुझाव के रूप में पूरे तरह से सरकार ने देखा है। वो जेपीसी के माध्यम से हो या डायरेक्ट दिया हो, हमने सब उसको देखा है। इससे बड़ा, कभी भी इससे ज्यादा संख्या में किसी भी बिल कपर में लोगों का याचिकाएं नहीं आया आज तक। कुल मिलाकर के 284 डेलीगेशन ने अलग अलग समुदाय के जो स्टेक होल्डर से, उन्होंने कमिटी के सामने में अपने बात को रखा है, सुझाव भी दिया है।
चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर यह विधेयक लाकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि यह विधेयक संविधान के खिलाफ है।
ये बिल आज इस संविधान के इस जो मूल जो ढांचा है उस पर आक्रमण है, और इनकी जो पूरा जो भाषण था वो हमारे संविधान के इस मौलिक अधिकार पर, हमारे संघीय ढांचे पर एक आक्रमण था।
विधेयक पर चर्चा जारी है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये विधेयक संयुक्त संसदीय समिति द्वारा विस्तृत विचार विमर्श के बाद लाया गया है, इसे मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है।
भारत सरकार की कैबिनेट ने इस बारे में एक बिल अप्रूव कर सदन के सामने रखा। आपके द्वारा ये बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया, जिसका विपक्ष का भी बड़ा आग्रह। कमेटी ने इस पर सुविचारित रूप से अपना मत प्रकट किया। वो जो मत प्रकट हुआ, वो मत फिर से कैबिनेट के सामने गया। कमेटी के जो सुझाव थे, ये भारत सरकार की कैबिनेट ने स्वीकार किए और अमेंडमेंट के रूप में किरण रिजिजू जी लेकर आए।
और अब चलते हैं लोकसभा, जहां समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव वक्फ संशोधन विधेयक पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं।
अध्यक्ष महोदय, भाजपा जब भी कोई नया बिल लाती है तो वो अपनी नाकामी छुपाती है। भाजपा वाले मुसलमान भाइयों की वक्फ की जमीन चिन्हित करने की बात कर रहे हैं, जिससे महाकुंभ में जो हिंदू मारे गए हैं या खो गए हैं उनको चिन्हित करने की बात पर पर्दा पड़ जाए। अध्यक्ष होने में मुझे खुशी इस बात की कि हमारा धर्म हमारा धर्म अध्यक्ष महोदय नहीं कुछ कहना चाहते हैं
नहीं प्लीज उनको अलाउ नहीं किया
अध्यक्ष महोदय कुंभ में आस्था सबकी है, कोई ऐसा नहीं जिसकी आस्था ना हो, और कुंभ कोई पहली बार नहीं हो रहा था। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ऐसा प्रचार किया।
और जानकारी के लिए बात करते हैं संसद के बाहर मौजूद हमारे संवाददाता भूपेंद्र से। भूपेंद्र, लोकसभा में आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, वक्फ संशोधन विधेयक पर सदन में चर्चा जारी है, आपके पास और क्या जानकारी है?
जी लवलीन, इस वक्त लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा चल रही है और विधेयक पर चर्चा के लिए करीब 8 घंटे का समय दिया गया है। विधेयक पेश करते हुए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने इसके कई प्रावधानों पर विस्तार से प्रकाश डाला और कहा कि यह बहुत बड़ा सुधार है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि यह विधेयक किसी की संपत्ति जब्त करने वाला नहीं है, बल्कि इसका मकसद वक्फ बोर्ड को समावेशी बनाना है और इसका मुसलमानों की धार्मिक प्रथाओं से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि वक्फ विधेयक को उम्मीद विधेयक के नाम से जाना जाएगा। वहीं कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने पलटवार करते हुए सरकार पर एक खास अल्पसंख्यक समूह को बदनाम करने का आरोप लगाया। इस समय सपा के अखिलेश यादव जो है कि बोल रहे हैं इस बिल पे, उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, नोटबंदी जैसे मुद्दे उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश की और उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यह बिल सरकार अपनी विफलता छुपाने के लिए लाई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ से अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता इस विधेयक पर बोलने वाले हैं। विपक्षी दल इस विधेयक का विरोध करने के लिए लगभग एकजुट है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए के सहयोगी इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं। वहीं राज्यसभा की अगर बात करें तो आप्रवास और विदेशी विषयक विधेयक पर चर्चा चल रही है, जो आप्रवास कानूनों को आधुनिक बनाने से संबंधित है। यह विधेयक लोकसभा में पहले ही पारित हो चुका है। इससे पहले लोकसभा और राज्यसभा दोनों में प्रश्नकाल चला, जिसमें सरकार की ओर से विभिन्न मंत्रालयों के कई मौखिक और लिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए। जी लवलीन
जी, धन्यवाद भूपेंद्र इस जानकारी के लिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
सिर्फ 2 बोतल तेल? आप तो हर महीने 3 बोतल तेल लेती हैं शीला जी।
हाँ, लेकिन अब हर महीने 10% कम तेल का उपयोग करना है।
वो क्यों?
क्योंकि अगर ओबेसिटी को रखना है दूर तो 10% कम तेल खाएं, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं।
एक फिट और हेल्दी नेशन बनने के लिए हमें ओबेसिटी की समस्या से निपटना ही होगा। एक तरीका मैंने सुझाया था, खाने के तेल में 10% की कमी करना।
कम तेल में बड़ी बात, सेहत रहे दिन और रात।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त वर्ष 2024-25 में डिजिटल खरीद प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम के माध्यम से 10 लाख से अधिक लोगों को काम पर रखा गया। जेम की उपलब्धि पर मुख्य कार्यकारी निदेशक अजय भादु ने कहा कि इस प्लेटफॉर्म ने डिजिटल क्षमताओं का दोहन किया है और ये प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर सरकारी खरीदारों द्वारा आवश्यक सभी संभावित सेवाओं के लिए वन स्टॉप शॉप के रूप में उभरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 देश का बौद्धिक पुनर्जागरण है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति वैश्विक स्तर पर शिक्षा नवाचार के माध्यम से आत्मनिर्भर और प्रतिस्पर्धी राष्ट्र का मार्ग प्रशस्त कर रही है। श्री मोदी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के एक समाचार पत्र में लिखे लेख को साझा करते हुए ये बात कही। लेख में पिछले एक दशक में भारत के शिक्षा क्षेत्र में हुए परिवर्तन पर प्रकाश डाला गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि 1.5 साल के भीतर सभी रेलवे स्टेशनों पर पर्याप्त संख्या में CCTV कैमरे लग जाएंगे। प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि भारतीय रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं।
बहुत सारे स्टेशंस में CCTV कैमरा लगाए गए हैं और वो लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। करीब करीब 1.5 साल के अंदर अंदर हर स्टेशन के अंदर CCTV कैमरा सफिशियंट क्वांटिटी में लग जाएंगे। जो RPF का रोल है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का, उसके बारे में मेंशन किया है। इसमें अब करीब 9.4% महिला कर्मचारी रेलवे की सुरक्षा बल में आ चुके हैं।
केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने देश के युवाओं से राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ काम करने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संसद को संबोधित करते हुए डॉक्टर मांडविया ने कहा कि देश के युवा भारत को विकसित देश बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
इस बार यूथ पार्लियामेंट का थीम विकसित भारत के साथ जुड़ी गई। आप युवा भाग्यशाली है, जिस परिसर में आप बैठे हैं ये सारा संकुल पार्लियामेंट संकुल बोला जाता है। यही परिसर में हमारे देश के नीति निर्धारक लोगों ने डिबेट करा था, डिस्कशन करा था, संवाद करा था और एक मत बना के देश को एक महान कॉन्स्टिट्यूशन दिया था।
जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने कठुआ जिले के घाटी और बिलावर के पहाड़ों के बीच पंचतीर्थी इलाके में आज लगातार दूसरे दिन भी तलाशी अभियान जारी रखा। कल रात सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच भारी गोलीबारी के बाद तलाशी अभियान शुरू किया गया। पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात और पुलिस महानिरीक्षक भीमसेन टूटी ने कल बिलावर के पास पंचतीर्थी का दौरा किया, तलाशी अभियान की समीक्षा की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका ने इस बात की पुष्टि की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज से नए शुल्क लागू कर देंगे। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने कहा कि अमेरिकी वस्तुओं पर शुल्क लगाने वाले देशों पर जवाबी शुल्क राष्ट्रपति की घोषणा के तुरंत बाद प्रभावी हो जाएंगे। ऑटो आयात पर 25% शुल्क कल से प्रभावी होगा। इससे पहले श्री ट्रंप ने 2 अप्रैल को मुक्ति दिवस घोषित करते हुए कहा था कि ये शुल्क अमेरिका को विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता से मुक्त करेंगे। इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल कांट्स ने कहा है कि सेना गाजा में अपने अभियान का विस्तार करेगी और बड़े क्षेत्रों पर कब्जा करेगी। एक बयान में कांट्स ने कहा कि कब्जा किए गए क्षेत्रों को इजरायली सुरक्षा क्षेत्रों में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि इसके लिए फलस्तीनियों को बड़े पैमाने पर निकालने की आवश्यकता होगी। उन्होंने लोगों से हमास को खत्म करने और इजरायली बंधकों को वापस करने का आग्रह किया। चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फोंटा ने जोर दिया कि बहुपक्षवाद ही दुनिया के लिए भविष्य का रास्ता है। चिली और भारत के बीच संबंधों पर आधारित 53वीं सप्रो हाउस व्याख्यान चिली और भारत ग्लोबल साउथ में एक साथ को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति फोंच ने कहा कि चिली भारत के साथ अपनी साझेदारी का विस्तार करना चाहता है क्योंकि द्विपक्षीय सहयोग के लिए ये बहुत बड़ा अवसर है। म्यांमार में पिछले सप्ताह के विनाशकारी भूकंप में मृतकों की संख्या 2719 हो गई है। 4,500 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं और 441 लोग लापता हैं। म्यांमार के सैन्य प्रमुख मिन उंग ह्वांग के अनुसार मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। आपदा के बाद क्षेत्र में राहत और बचाव कार्य जारी है। भारत ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत म्यांमार को लगातार राहत सामग्री और मानवीय सहायता भेज रहा है। वैश्विक स्तर पर मिले जुले संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में आज बढ़त का रुख है। दोपहर के कारोबार में सेंसेक्स 416 अंक बढ़कर 76,441 पर था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 111 अंक की वृद्धि के साथ 23,277 पर पहुंच गया। आईपीएल 2020 क्रिकेट में आज बेंगलुरु के एन चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 4 अंक और नेट रन रेट के साथ शीर्ष पर बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के पावन अवसर पर सोशल मीडिया पर मां दुर्गा की एक स्तुति साझा की। उन्होंने मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों को समर्पित इस स्तुति को सुनने का सबसे आग्रह किया है।
निज सुख कंदे मंदे स्पंदे शुभ करी बहुदय हृदय युते।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पेश किया। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, विधेयक का मुसलमानों की धार्मिक प्रथाओं से लेना देना नहीं, ये केवल वक्फ संपत्तियों से संबंधित है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में सरकारी ई मार्केट प्लेस के माध्यम से 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज से नए शुल्क लागू करेंगे। ऑटो आयात पर पहले से लगाया गया 25% शुल्क कल से प्रभावी होगा। इसराइल गाजा में सैन्य अभियानों का विस्तार करते हुए बड़े पैमाने पर फलस्तीनियों को सुरक्षित निकालेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।